सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना। सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना। तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے احکام تجارت. پچھلے ہفتے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے ساتھ پینل موجود تھا, اس ہفتے بھی وہی پینل موجود ہے لیکن سوالات نئے ہیں. انشاءاللہ آخر تک دیکھیں گے تو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا, شرعی احکام جاننے کو ملیں گے. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پینل کے سوالات ہوں گے, مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے, درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پینل ہمارے ساتھ وہی ہے, تعارف بھی وہی ہے. بڑھتے ہیں شہزاد بھائی کی طرف اور پہلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے شہزاد بھائی کیا مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. جی شہزاد بھائی,
سوال میرا یہ ہے کہ کچھ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اپنی جو پروڈکٹ کی جو پیکیجنگ ہوتی ہے اس کے بیک سائڈ پہ انگریڈینٹس لسٹ ہوتی ہے اجزاء کی, جو اس میں کچھ برانڈ کے نام یا پروڈکٹ کے نام شامل کرتی ہیں لیکن اصل میں وہ چیزیں شامل نہیں ہوتی, تو کیا اس طرح کی کمپنیز کے جو منافع ہوگا اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بتا کر دیا جا رہا ہے اگر وہ نہیں ہے تو دھوکہ تو ضرور ہے. مثال کے طور پر اس میں لکھا گیا کہ جناب اس میں تو فوڈ کلر ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز تھی, پتا چلا کہ فوڈ کلر تو کیا اس میں تو چمڑا لگنے والا رنگ جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے, تو دھوکہ ہے نا. اچھا کوانٹیٹی کم ہے یا بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس کے اندر یہی اجزاء ہیں. بعض اوقات جو ہے نا وہ وٹامنس کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں, منرلس کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں, تو اگر وہ لکھ رہی ہے اور دے نہیں رہی دھوکہ تو ضرور ہے اور یہ فیل ناجائز ہے. حدیث پاک میں کہ من غشا لیسا منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اب بالفرض اس کی قیمت میں بھی فرق آ رہا ہے, اگر یہ اجزاء ہوتے تو اس کی قیمت ہوتی مثال کے طور پر 1500 روپے اور یہ اجزاء نہیں ہے تو اس کی قیمت ہے 1000 روپے, تو یہ جو 500 روپے اضافی لیے جا رہے ہیں یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوں گے. کسٹمر نے یہ پیسے ان چیزوں کی وجہ سے دیے ہیں, تو یوں جو کمی وہ لے کر آیا ہے اس سے جو پرائز پہ فرق پڑ رہا ہے وہ جو فرق ہے وہ تو کسی صورت میں بھی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا. جی
سر مجھ اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں, کمپنیز کا تو مجھے نہیں پتا لیکن بعض اوقات پروڈکٹ ہے کھانے پینے کا ہی مجھے اس وقت خیال آیا, پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو انگریڈینٹس بیان کیے جاتے ہیں وہ موجود بھی ہوتے ہیں لیکن کوالٹی وائز ان میں فرق ہوتا ہے. جو کوالٹی لکھی یا جو اسٹینڈرڈ لکھا ان کا اے کوالٹی یا اے اسٹینڈرڈ کے مینشن کیا ہے اور اس کے اندر بی ایس سی کوالٹی کی چیز ہے, تو ایسے میں کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کی اپنی کمپنی نہیں ہے, اپنی پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ وہ کسی برانڈ کو آگے جو ہے وہ مڈل مین بن کے کام کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ہوگی, وہ کیسے چیک کرے اور نہ چیک کرے؟
دیکھیے تھوڑا سا نا یہ سوال جی تھوڑا سا عجیب سا یوں ہے. ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ بھئی میں نا عطر میں ملاوٹ کرتا ہوں تو میرا یہ کام کیسا؟ کس نے جواب لکھا اس پر, اس سے میں نے ڈسکشن ہوئی کہ بھئی پہلے تو ملاوٹ کی کام تعین کریں, ملاوٹ کہتے ہیں کس کو ہے. عطر کا یہ مطلب تھوڑی یہ کہ جناب وہ پھولوں سے عرق نکلا وہ آیا اور وہ آپ بوتل میں ڈالا گیا اور وہ لے آئے. بعض اوقات ایک چیز کو ہم کسی اور جانب سے دیکھتے ہیں, کسی اور چیز کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ برانڈ ہے اور یہ جو برانڈ ہے اس کے اندر اس نے ملاوٹ کی ہے, اس برانڈ والے نے بھی تو کچھ تو मिलावट की होगी ना, क्योंकि ये बनता फार्मूला से इधर, ठीक है, नेचुरल चीज़ें भी डलती होंगी, फार्मूलाज होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं,
से।
प्रोसेस होते हैं। तो इस वक्त लोगों का जो एक स्टैंडर्ड है वो ब्रांड भी स्टैंडर्ड है कि भाई ये जो ब्रांड है इसके अंदर जो है ना, मिसाल के तौर पर दूध है कोई, ठीक है, तो इसका जायका इस तरह का है, इसके अंदर जो है थिकनेस ऐसी है।
जी
तो लोग इस वक्त जो है ना वो क्वालिटी ब्रांड्स को देख कर भी कर रहे होते हैं। हालांकि देखा जाए तो मुझे एक साइंसदान थे, मुझे कहना लगा जो गाढ़ा दूध होता है वो 2 नंबर होता है, कैसे, तो उसमें मिक्सिंग होती है यूरिया और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नाम बताया कि जनाब जो फार्मूला दूध का है वही यूरिया का है, और यूं और दूध तो बहुत पतला होता है और यूं यूं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो ब्रांड्स को ही फोकियत देते हैं, उनके अंदर वही चीज अहमियत रखती है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि भाई उसके अंदर वो चीजें नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, तो पहले तो हम क्वालिटी का तयन करें ना, क्वालिटी का तयन कैसे किया हमने, कौन सी चीज क्वालिटी है, पता चले एक चीज नेचुरल होना ही उसकी क्वालिटी है। मैं एक वीडियो देख रहा था, छुआरा बन रहा था, तो उस छुआरे के अंदर भी उन्होंने पहले उसको पानी के अंदर जो है ना उबाला, उसके अंदर रंग काट डाला, रंग काट से उसमें शाइनिंग आ गई। अब उर्फन इसको मिलावट तो कोई भी नहीं कहेगा,
ठीक है।
लेकिन किसी को पता हो कि यार मैं तो नेचुरल के पीछे भाग रहा हूं, इसके अंदर तो मसाले डलकर आ रहे हैं। मैंने पिछले साल गुड़ बनवाया
जी
गांव से, तो मैंने कहा भाई कोई रंग काट नहीं डलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल नेचुरल, हमें सफेद नहीं चाहिए, भले काला बनता है तो बने, ठीक है। वो मेरी तरजियात थी, बिल्कुल काला बना, वो बिल्कुल नरम नरम नरम, वो खराब भी जल्दी हो गया, काफी सारा लेकर आया था, तो ज्यादा देर वो 2-3 महीने तो उसने निकाले, फिर उसने नहीं निकाले। अब जो आमतौर पर जो चीज मार्केट में होती है उसके अंदर रंग काट डला होता है सफेद, लोगों को बिल्कुल जनाब सफेद गुड़ चाहिए, ठीक है, तो रंग काट डल के वो रखा होता है। ये चीनी हमारी है, ब्राउन चीनी आम चीनी से 100 रुपया महंगी है पर किलो, इसी ब्राउन चीनी को रंग काट डाल के सफेद किया जाता है,
ऐसे ही
ठीक है। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब ये जो सफेद चीनी है ये 1 नंबर है, वो 2 नंबर है। तो बाज औकात एक चीज को दूसरी एंगल से हम देखते हैं, किसी और चीज को सामने रखकर देखते हैं,
सही।
पर भी डिबेट होनी चाहिए कि क्वालिटी आप किसको कह रहे हैं, आप मिलावट किसको कह रहे हैं, इससे क्या मुराद है। तो लोगों की तरजीहात, लोगों की उस चीज के बारे में सोच, और फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक चीज की सोच होती है एक आम आदमी की
ठीक है
और एक होती है उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसकी,
ठीक है
तो उस हवाले से भी एक डिबेट होनी चाहिए।
सही।
अब आप ये बताएं, आप सवाल दोबारा करना चाहें दोबारा कर लें,
मुझसे आपने जो जवाब इरशाद फरमाया यकीनन वही दुरुस्त है। मेरी तो खैर मुरादी
नहीं,
से,
बात दुरुस्त और सही होने की नहीं है,
हाँ मेरी मुराद जो
हम
थी,
डिटेल में जाना चाह रहे थे, हम तफसील में।
मेरी मुराद ये थी कि जैसे बिलखुसूस अभी आपने फरमाया गुड़ की भी बात फरमाई, शायद सर्दियों में ही बनवाया होगा आपने, चले फिर तकसीम कर दीजिएगा ताकि खराब ना हो। तो मैं भी इसी सिनेरियो में बात कर रहा था कि कुछ जो है वो सर्दियों में ड्राई फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ड्राई फ्रूट से बनी हुई चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, कुछ ऐसे दलिया आ रहे हैं कि जिनके अंदर ड्राई फ्रूट का दावा किया जाता है, जिसमें ये इस क्वालिटी के ड्राई फ्रूट हैं। अब ड्राई फ्रूट में आती है क्वालिटी और उसमें ठीक ठाक रेट का फर्क होता है। यानी इंजीर को ही ले लें तो A1 क्वालिटी की जो इंजीर है हमारी यहाँ, तो वो मेरा ख्याल है कोई 2500-3000 रुपये किलो है, और फिर आप नीचे आते जाएं तो शायद 1200-1500 रुपये किलो भी इंजीर है। तो ये क्वालिटी का जो फर्क है।
देखिए बात क्वालिटी की अपनी जगह पर है, बात क्वालिटी से आगे कुछ और चीजें भी होती हैं,
जी
जैसे अखरोट ले लें हम। अब हम कश्मीर गए हुए थे पिछले हफ्ते, 48 घंटे का जाना हुआ, वहां तो रोड पे ही बैठे हैं अखरोट वाले, तो हमने मालूमात की तो पता चला तो बहुत महंगे दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि भाई क्यों ना कुछ सस्ते लिए जाए,
ठीक है
तो किसी ने जुड़िया बाजार पे फोन किया किसी बड़े ताजिर को, तो उसने कहा कि यहाँ तो ये इस कीमत के मिल रहे हैं, मतलब सेम कीमत, कहा कि कश्मीर के अखरोट अच्छे भी नहीं होते, उस्ताद जी का कहना था कि सख्त होते हैं,
कागजी नहीं होते,
कागजी नहीं होते, तो इनके अंदर जो है ना वो छिलका ज्यादा होता है,
वेट उसका गिरी का वेट कम
गिरी
हो।
का वेट कम हो गया। अब ये बात जो है वो एक इसकी खासियत जरूर है, आप ये नहीं कह सकते कि उसकी जो गिरी है वो उसके अंदर तेल नहीं है, या उसकी फादियत कम है, या उसके जो है ना वो असरात कम है, किसी जाविये से आप उसको तरजीह दे रहे होते हैं। अच्छा, एक जगह से हमने लिया 1 करोड़, फिर तो उसने खुद बताया कि ये वाला जो लेंगे ना तो इसके अंदर खाने बने हुए हैं तो गिरी कम निकलेगी, और ये वाला है ना इसमें 2 गिरी निकलेगी, जिससे तोड़े पूरी साबुत, एक गिरी दूसरी गिरी, तो
ठीक है।
कहा इसमें ज्यादा निकलेगा। तो अब उसके अंदर ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, जिस चीज के अंदर मिक्सिंग होती है ना, तो आमतौर पर यह होता है कि हाँ भाई ड्राई फ्रूट ही है। अब ये वो कश्मीरी है या ये सवाती है या पिशावर का है, कंधार का है, नॉर्मल इस पर बहस नहीं होती। ड्राई फ्रूट होना बड़ी बात है हमारे माशरे में, अगर कहा है तो वो डाल दे बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, मुफ्ती साहब ने इसे कबूल कर लिया तो हमें क्या इसमें माने हैं, क्या माना
हाँ,
है।
बहुत सारे लोग जो हैं वो जाली जो ना काजू बनाते हैं, जो काजू डला हुआ है फालूदे में, इसमें फलाह में, ठीक है, काजू तो सब बहुत महंगा है, तो चिलगोजे के बाद काजू ही महंगा है। तो वो मैंने एक मरतबा वीडियो देखी थी, तो वो आटे से, बिल्कुल आटे से बना के काजू, फिर उसको रंग रहे हैं मट्टी में जिस तरह चने बुने जाते हैं, और फिर थोड़ा कलर आ गया और जनाब ये काजू हो गया, बताएं
ठीक है,
आप।
और मुफ्ती आपने बात भी कितनी सही फरमाई है, फालूदे में अगर काजू जैसी चीजें आएगी तो इतना ज्यादा हर किसी को फर्क फील भी नहीं होगा, ये जो जैसे कहते हैं ना वो टेस्ट बर्ड्स जो हैं
भाई मैं एक अरसे तक जो है ना वो खुशबू मार्केट जाता रहा, खुशबू मार्केट में उस टाइम छालिया तो बहुत आम थी, आजकल तो सकती है, हर छालिया की खुशबू अवेलेबल थी, हर छालिया की खुशबू, यानी जो 2 नंबरी करना चाहते हैं वो अपने अपने घर में बनाए, खुशबू डाले, वो छालिया खड़ा हो जाएगी, पहचानना तो बड़ा मुश्किल है, एतबार ही कर सकते हैं हम सिर्फ।
ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारे काजू पिस्ते बादाम काफी हो गए और उससे मुतालिक सवालात भी हो गए, शरई रहनुमाई भी हो गई है। आसिफ भाई क्या सवाल करें।
मुफ्ती साहब, मेरा सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे यहाँ जैसे मिठाई शॉप्स वाले जो हैं, अक्सर हमने देखा है कि वो वजन में जो है वो डब्बे का वजन भी शुमार करते हैं, तो क्या ये शरई तौर पे जायज है?
देखिए, तोल का जो मामला है ना उसका दारोमदार उर्फ पर है, जैसे आप बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं अनाज, जब आप 40 किलो खरीदते हैं ना तो वो 2 किलो ज्यादा देते हैं, उनका एक उर्फ है कि भाई हम 2 किलो ज्यादा इसलिए दे रहे हैं कि 1 किलो तो ये जो बोरी है
बर्तन
उसके बदले में, और 1 किलो इसलिए है कि ये खुश्क होना है, अभी थोड़ी इसकी जो नमी है वो खुश्क होगी तो उसका वजन कम हो जाएगा, बड़े सौदों के अंदर खासतौर पर यह होता है। अब हम छोटे सौदों पर आ जाते हैं, हम भी तो जाते हैं ना जूता लेने, डब्बा साथ आता है, ठीक है, लिया हमने जूता होता है, आजकल तो सूट ले रहे हैं हम, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत डब्बे आ गए हैं, तो वो डब्बे के अलग से पैसे चार्ज नहीं करता हमसे, एक उर्फ है कि भाई ठीक है डब्बे वाला है तो हम डब्बे वाला लेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, पैकिंग में आती हैं, आप केक लेने जाते हैं तो पूछता है जनाब आपको पैकिंग वाला चाहिए या आपको सिंपल चाहिए, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर देखते हैं। उर्फ हमारे यहाँ यही है कि मिठाई जब उसका तोल होता है तो वो डब्बे के साथ होता है, तो यूं समझे कि हम जो रेट दे रहे हैं किलो का वो हम 950 ग्राम का दे रहे होते हैं, डब्बा उसके साथ तुफेली बनकर हमारे साथ आ रहा होता है। अब कोई शख्स इस डब्बे में 2 नंबरी करे कि जिस साइज का डब्बा और फैम में राइज है उससे ज्यादा कोई और गत्ता डाले, तो ये तो किसी तौर पर भी जायज नहीं होगा। और मैंने ऐसे भी बेकरी देखी है जो ये कहते हैं कि हम डब्बे का तोल नहीं करते। एक जगह मैं किसी शहर में गया था, पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, लिखा हुआ था वहां पे हम डब्बे का तोल नहीं करते। अच्छी बात है।
मुझसे लेकिन जो है ना बहुत सारी नहीं चले, एक चीज ऐसी भी आप फरमा रहे थे, डब्बे के साथ ही सारी चीजें बिकती हैं, लेकिन जेवरात की मार्केट में डब्बा जेवरात के साथ नहीं तुलता, उसके अलग से चार्जेस लिए जाते हैं।
अच्छा, मुफ्त में नहीं मिलता?
मुफ्त में तो नहीं मिलता सर, लेकिन जेवरात के साथ तुलता भी नहीं है।
नहीं तो हमने और जो मिसालें ली हैं सूट की और दीगर चीजों की, तो तुल थोड़ी रहा है वो,
ठीक है,
लेकिन यहाँ एक और चीज भी
इसमें आप ग्रॉस वेट लिख देना, डब्बे के साथ शामिल हो जाएगा, 1 किलो
एक
ग्रॉस
और चीज भी है, देखे ना आप,
उसमें ये।
इस वक्त जो आजकल महंगाई हुई है, बिस्किट वालों ने बिस्किट कम कर दिए, ठीक है, 3 बिस्किट निकल रहे हैं, ठीक है, अच्छा उसका साइज कम कर दिया है। और इसी तरीके से एक जहन बना होता है भी पाओ, आधा किलो, किलो, तो ये ब्रांड्स की चीजें होती हैं, छोटा सा लिखा होता है 900 ग्राम, 450 ग्राम, 200 ग्राम। तो यहाँ भी जो यूज्ड टू लोग हैं वो तो हो सकता है बहुत देख के लेते हो, वरना एक आम आदमी को भी धोखा हो सकता है। इसके क्या मकासद होते हैं भाई, क्यों लिखते हैं 500 ग्राम, क्यों नहीं लिखते?
सर जितना है उतना ही लिखते हैं।
तो 450 के बजाय 500 भी डाल सकते थे ना।
नहीं, वो रेट को मेंटेन रखने के लिए वो क्वांटिटी कम कर देते हैं, रेट नहीं बढ़ाते। बहुत सारी
अच्छा,
चीजों में ऐसे ही होता है,
कंपटीशन होती है उनकी दूसरी
कंपटीशन भी होता है।
कंपनियों से।
हमारे यहाँ देख लें आप, जो आप बिस्किट की मिसाल दे रहे थे, अपने बचपन से हम देखते आ रहे थे कि टिक्की पैक की जो हमारे यहाँ कीमत थी वो लगभग 5 रुपए थी शायद, सर काफी अरसे रही है, बहुत तवील टाइम 5 रुपए रही है, लेकिन वो बढ़ाते नहीं थे, उसका साइज कम करते जाते थे, इससे बड़े चुटकुले भी बने फिर। लेकिन अब जब नागुजीर हो गया तो उन्होंने रेट भी बढ़ाया और तादाद भी कम कर दी। सही,
लेकिन मुफ्ती साहब इसमें भी ये चीज है ना कि एक शख्स आया है, उसको तो ये नहीं पता है, उसने कहा मुझे 1 किलो मिठाई दे दें। अब वो जो उसकी 900 ग्राम की पैकिंग है, वो उसको अवेयरनेस तो नहीं दे रहा कि ये 900 ग्राम का है। जैसे आजकल ऑयल की पैकिंग भी हम देखते हैं, वो अक्सर लोग लीटर के हिसाब से, ये सस्ता मिल रहा है, वो 900 ग्राम की ऑयल की थैलियाँ होती हैं। तो उस बंदे ने तो कहा मुझे 1 किलो मिठाई दे दें। अब ये जो देने वाला है, उसने पैकिंग अगर कोई बिस्किट है या कोई चीज़ है वो इस 900 ग्राम की रखी हुई है, तो इसकी क्या शरीफ, भले उसने लिख के रखा हुआ है।
देखिए वो कह रहा है 1 किलो मिठाई दे रहे, तो मिठाई बगैर डब्बे के नहीं दी जाती। एक चलन है, एक रवाज है जो माशरे में करार पकड़ चुका है कि खरीदार और दुकानदार की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। यही वजह है कि किसी भी दुकान पर आप तनाजा नहीं देखेंगे। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक और सूरत भी होती है, फ्लैट्स बुक होते हैं ना। अब वो बड़े टेक्निकल वहां पर होता है कि जी ग्रास एरिया इतना है, नेट एरिया इतना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर 1050 स्क्वायर फीट एरिया बयान किया है, ठीक है, तो वो जो बाहर की राहदारी है उसको भी शामिल कर रहे होते हैं। तो इसमें भी जो है ना सामने वालों को समझाना जरूरी है कि भाई अगर आपकी मुराद ये है कि राहदारी भी शामिल हो के इतना एरिया है उसको बताएं। ये चीजें ऐसी हैं जो आम चलन की नहीं है, रोजमर्रा की नहीं है। रोजमर्रा की चीजों पे तो एक वो होता है अपना उर्फ होता है, कभी कभार की जो चीजें हैं तो वहां सामने वालों को पता भी है कि आप आपकी मुराद ये है। हो सकता है वो ये समझ रहा हो कि मेरे अंदर का जो कवर्ड एरिया होगा वो इतना होगा। तो इस तरह की चीजों में भी बताना जरूरी है।
ठीक, क्लियर हो जाए कि जो
जी
भी देना लेना है वो क्या है।
क्या है
ठीक है, अदनान भाई की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल।
जी, असल सवाल ये है कि अक्सर हम एक टर्म यूज करते हैं और सुनते भी हैं कि जायज मुनाफा, इस्लाम में जायज मुनाफा जो है वो जायज मुनाफा क्या है? मतलब कोई डिफाइन है, परसेंटेज डिफाइन है, कोई अमाउंट डिफाइन है, या बे पे कुछ भी डिफाइन हो सकता है, इस रहनुमाई कर दें।
वैसे तो ये एक अवामी जुमला है, शरीय एतबार से मुनाफे की कोई हद मुकर्रर नहीं है। और अहद रिसालत में एक मरतबा ऐसा हुआ, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अशिया की कीमत मुकर्रर नहीं फरमाई, कीमत को आजाद छोड़ दिया गया है। बाद में ऐसा हुआ कि भाई जब लोगों को अजियत पहुंचने लगी तो फिर उलमा ने फतवा दिया कि हुक्मरान जो है वो चीजों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भाव मुकरर कर सकते हैं, तो फिर भाव मुकरर होना भी शुरू हुए। लेकिन आज भी आटे में नमक के बराबर चीजों के भाव मुकरर है। अब आप ये कंपनी शायद स्टील बनाती होगी, नाम से जाहिर है स्टील का कोई भाव मुकरर नहीं होता, मार्केट पे चलता है, जो अप डाउन होगा उसके मुताबिक कम ज्यादा हो जाएगा। स्क्रैप का कोई भाव मुकरर नहीं होता, कपड़े का और चीजों का। तो असल तो यह है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है खरीदार और माल बेचने वाले की, लेकिन कुछ अखलाकी तकाजे हैं, खास तौर पर जो जरूरी अशियाँ हैं, दवाएं हो गई, खाने पीने की चीजें हो गई और चीजें हो गई, तो उसमें बंदा इतना नफा ले कि जो लोगों पर भारी ना पड़े। बाज़ुकात एक ही मार्केट के अंदर एक बंदा 200 रुपये रखकर काम कर रहा होता है और एक बंदा 2000 रख के काम कर रहा होता है। अब ग्राहक को जब ये फर्क पता चलता है ना कि ये इतने का बेच रहा है, ये इतने का बेच रहा है, फिर वो बुरा भला बोलता है। तो ये भी एक मसला है कि अंगुश्त नुमाई से बचना चाहिए। आप पर उंगली उठे, आपने अगर चाहे जायज काम किया है लेकिन जब आप पर उंगली उठ रही है तो ऐसे काम से भी बचना इस शरीयत को मतलूब है। अब इसके अंदर एक तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू यह है कि हर आदमी जो है वो एक इंसान है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो मुसलमान जो है वो खैर ख्वाही की उसके बड़ी तरकीब दी गई है कि वो दूसरे के दर्द को समझे। बाज़ुकात क्या होता है कि बेहिसी गालिब आ जाती है, जैसे खाद के मामले में होता है, आजकल गंदम की बिजाई हो रही है, पूरे मुल्क में एक आवाज पड़ी हुई है खाद महंगी मिल रही है, खाद गवर्नमेंट का रेट मुकर्रर है लेकिन उस मुकर्रर रेट से बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है। अच्छा कौन महंगी बेच रहा है जनाब, ये ब्लैक मार्केटिंग कौन कर रहा है? लोग ही कर रहे हैं हमारे माशरे के। अगर उस किसान को सस्ती खाद मिलेगी, मतलब अगर किसी के पास 10 एकड़ जमीन है तो कई हजार का यहां तक के लाख तक का फर्क आ सकता है उसके ऊपर। तो बाज़ औकात ब्लैक मार्केटिंग करके, मस्नूई बहरान पैदा करके चीजों की जो कीमतें बढ़ाई जाती है ना, अगर वहां जरर का पहलू है, लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, तो फिर तो मुमानत में आ जाती है। वैसे तो जो जखीरा अंदोजी है मुतलकन मना नहीं है, उसकी पूरी तफसील है, लेकिन जहां जरर मकसूद है, लोगों को जरर पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, मार्केट में मोनोपोली पैदा करना, ये जो तरीकेकार हैं ये शरीयत की नेचर नहीं है। शरीयत की नेचर तो ये है कि आप आसानी पैदा करें। और एक और चीज जो बड़ी अहम है, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला ने एक रिसाला लिखा, तदबीर फलास का नाम है, उसमें आपने लिखा उस वक्त के जो हालात थे कि जनाब हमारा कोई बंदा काम करे तो वो इतना नफा लेता है, दूसरे मजहब के लोग जो काम करें थोड़ा सा नफा रखते हैं, कि सेल ज्यादा होती है। आज आप देख ले हमारा कंपटीटर टेक्सटाइल में कौन है, ये बांग्लादेश है, खैर मुसलमान मुल्क है वो भी, वहां के लोग भी मुसलमान है, काबिल इज्जत है। क्यों कंपटीटर है वो हमारा? कि वहां चीज सस्ती है, जो खरीदार है उसको यहाँ के मुकाबले में कुछ सस्ती मिल रही है। चाइना से लोग चीज मंगवाते हैं, वहां लेबर सस्ती है, वहां चीज ज्यादा क्वांटिटी में बनती है, मशीनी सिस्टम ज्यादा है, जो तैयारी के अखराज वो कम आते हैं, तो पूरी दुनिया वहां से मंगवा रही है जनाब। तो जब आप प्राइस सस्ती रखते हैं तो आपकी जो रोलिंग है वो बढ़ जाती है, और रोलिंग बढ़ने से एक पूरा मौशी सर्कल चलता है, पूरा मौशी सर्कल उससे ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो बाज़ औक़ात हम नफा ज्यादा रखने के चक्कर में हम ग्राहकों को नाराज कर रहे होते हैं। अगर हम छोटी सतह की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो आप अगर जितना ज्यादा कीमत पर गौर करेंगे और जितना बेहतर करेंगे उतने ज्यादा कस्टमर आपकी तरफ मायल होंगे, ऑर्डर आपके पास ज्यादा आएंगे। तो ये तो एक वो चीज है जिसको उलमा ने बयान किया है कि जनाब कम नफा रखा जाए ताकि सर्कल ज्यादा हो चीजों को, तिजारत का हजम बढ़े।
तो इस सूरत में ये कि मुनाफा जो है वो जायज है, लेकिन अगर उसी की जो कंट्रोवर्सी में देखें जखीरा अंदाजी, तो उस बारे में तो हम सुनते हैं कि जायज नहीं है, तो उस पर फिर क्या हुक्म है?
देखिए जखीरा अंदाजी की तफसील है, जखीरा अंदाजी मना है खाने पीने की चीजों में या जो चीजें जानवरों के खाने पीने में आती हैं। एक सूरत यह निकली कि जिस चीज का रेट हुकूमत ने मुकर्रर कर दिया है तो कानूनी तौर पर हम बाउंड हैं उसके खिलाफ वर्जी ना करें। और एक है ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में भी अगर जरर पहुंचाना मकसूद है, तकलीफ पहुंचाना मकसूद है, और मसनू बुरान पैदा करके कि बस मैं मार्केट का बादशाह बन जाऊं, लोगों को तकलीफ पहुंचे, ये सूरत जायज नहीं होगी।
ठीक है जी,
वैसे जखीरा अंदोजी की जा सकती है, अनाज की आप जखीरा अंदोजी नहीं करेंगे, पूरा सारा अनाज कैसे मिलेगा? तो बात चीजें तो तकाजा है कि आपके पास स्टॉक रहे।
ठीक ठीक है जी, ये भी हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे
मेरा सवाल कुछ थोड़ा डिफरेंट नोयत का है, कारोबारी
जी
से मुतालिक, ये मेरे अपने जहन में भी खटकता रहता है ये चीज। जैसे हमारे एक ये बड़ी बड़ी ब्रांड है या बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये एक मखसूस तबका है, कुछ खानदानों पे मुश्तमिल है। अब ये इनको क्या इजाजत होनी चाहिए कि ये हर जगह अपने अपने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खोलें, जिससे ये होता है कि जो गरीब लोगों ने अपने स्टोर खोले हुए छोटे मोहल्लों में या इधर उधर, वहां से बजाय लोग खरीदें, ये लोग अक्सर ऑफरें भी करते हैं, ये इनको प्रोफाइल इसलिए होता है कि ये मालदार लोग हैं, बड़ी तादाद में ये बनाते भी हैं, अपने स्टोर भी होते हैं, गोदाम भी, खरीदारी भी एक साथ करते हैं, तो फिर वो ऑफर भी कर सकते हैं। एक आम जो ताजिर है जिसने मोहल्ले में गलियों में दुकानें खोली हुई हैं, आवाम का ये तासर होता है सब उधर रुख करते हैं, ये एक जगह पे सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो लिए क्या हक तलफी नहीं है ये छोटे ताजर जो हैं कि ये चंद खानदान जो हैं वो किसी भी इलाके में जो है अपने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रहे हैं, लोग उधर मुंतकिल हो रहे हैं। और
सवाल ये आया कि बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो खुल रहे हैं, आया वो ठीक है या नहीं,
शरई तो शरई लिहाज से कोई लिमिटेशन इनकी होनी चाहिए या है, या शरई किस तरह से इसको हम देखते हैं?
आपसे कोई बात अर्ज करूं मैं, ये बड़े बड़े स्टोर होते हैं ना, ये दिखने में बड़े होते हैं, ये शेल्फ पर चल रहे होते हैं, हमारे शेल्फ किराए के लिए मौजूद है, आप संभाल रख लो अपना। एक एक रेक जो है ना इसका, ये रिजर्व होता है कि आप आए और इसमें अपना माल बेचें, ऐसा नहीं है कि सारा एक बंदे का है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी ये सिस्टम है और मुल्कों में भी है, जो हमसे तो लोग आकर मुझसे पूछते हैं ना फ्लाट डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पर जो ना मुझे एक शेल्फ मिल रहा है, मैं उसमें जाकर सामान अपना रखूँगा, अपनी इन्वेस्ट करूँगा, फिर हमारा आपस में ये माहदा होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने अपने तारुफ में जो पिछले किस्म में चल चुका है शायद कहा था कि हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, आप ही ने कहा था,
लिस्टेड अदनान भाई ने कहा था,
लिस्टेड अदनान
भाई, अच्छा इन्होंने कहा था। अब देखो लिस्टेड कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई है जनाब, उसके अपने पास पैसे नहीं है तो लोगों से ले रही है, ठीक है, इतना उसका फैलाव हो गया है, तो फैलाव कोई बुरी चीज नहीं है, ये चीज जरूरी है कि ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कारोबार की नोयत चेंज होती है। आज जिस गले मोहल्ले का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो चीजें जो ऑनलाइन लोग खरीद रहे हैं, आप गली मोहल्लों में छोड़ें बड़ी मार्केट में चले जाएं, वो दुकानों पर सन्नाटे पड़े हुए, खुद वही दुकानदार ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, ऑनलाइन तरीके से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, और उन दुकानों में बैठ के वो काम कर रहे हैं। वहां उनका भी बैठना इसलिए जरूरी है कि मार्केट में बैठेंगे तो खरीदेंगे बेचेंगे, भाव ताव मार्केट में बैठ के सब चीजें अपडेट होती हैं, ट्रेंड्स बदल रहे हैं। गली मोहल्ले के जो अफराद हैं, ऐसा नहीं कि इनका काम बंद हो गया है। और अगर आप कराची की बात करें, मैं समझता हूं कि 100 बड़ी सुपर स्टोर भी नहीं है कराची में, ले देंगे कोई 20-30 होंगे, कि मेरे भाई 50 होंगे, आबादी कितनी है कराची की, 2.5 से 3 करोड़ आबादी। तो ये गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं इसकी वैल्यू आज भी बरकरार है, कि कोई हक तलफी नहीं हो रही, सस्ता और महंगा चलता रहता है, गली मोहल्ले की दुकान से जीएसटी नहीं बनता, कि आपने जनाब 1000 की खरीदी है तो 17% अब जीएसटी अलग से इंक्लूड है। गली मोहल्ले की दुकान पर आप बहुत सारी चीजें ऐसी ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, दीगर चीजें ले लेते हैं, जो प्रोडक्ट है उस पर तो जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड होता है, लेकिन ये जो स्टोर है इन पर तो बात चीजों में प्रमोशन आती है, उसकी वजह भी ये होती है कि फैक्ट्री से डायरेक्ट माल आ रहा होता है, तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं ये, डिफरेंट चीजें हैं, हक तलफी वाला मामला नहीं है, सब कमा रहे हैं, नसीब है, गली मोहल्ले वालों को भी एक दिन ट्रेंड बदलना पड़ेगा, चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी। मैंने तुर्की में देखा, तुर्की मेरी तवज्जो दिलाई किसी ने, उन्होंने कहा कि यहां ना 2 कंपनियां हैं, ये करियाना की बात हो रही है, उसको हम सुपर स्टोर कहते हैं आजकल, ग्रोसरी, तो गवर्नमेंट के तहत 2 कंपनियां चलती हैं, शहर में आप चले जाएं, गांव में चले जाएं, हमने तो 12 शहरों का सफर किया था, तो उन्होंने मुझे गांव में भी दिखाया कि देखें ये खुली हुई है, तो 1-2 चेन ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ, वो पता नहीं गवर्नमेंट की है या लाइसेंस याफ्ता है, प्राइवेट है, एक स्टैंडर्ड, वो छोटे इलाकों में भी है, वो गांव देहात में भी है, वो बड़ी जगहों पर भी है, हर जगह खुली हुई है। तो ये हो सकता है कि भाई कोई इस तरह की चीज आए कि जो क्वालिटी मेंटेन भी करे, मोनोपोली भी ना करे, और चीजों के रेट भी बेहतर हों, जैसा कि एक साहब कनाडा से आए तो, बल्कि वो डॉक्टर थे ना, तो मैं वैसे उनसे गुफ्तगू शुरू की मैंने, क्या क्यों कैसे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि वहां डॉक्टर वहां के डिफेंस में बैठा है, या वहां के औरंगे और कुरंगे में बैठा है, सेम फीस होगी उसकी, उसकी फीस में कोई फर्क नहीं होगा। हमारे यहाँ एरिया वाइज फीसें बदल जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें बेहतरी की गुंजाइश होती है। पूरा सिस्टम गलत नहीं है, ठीक है, एक ऑप्शन है, एक नई चीज है, और खानदानों की बात भी नहीं है। इसके पीछे कितना बड़ा मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये एक के बारे में पता है कि पब्लिक पार्टनरशिप करके जनाब पूरा प्रोजेक्ट खड़ा किया गया, जब जाके इतना मेगा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हुआ। और वैसे भी देखा जाए तो मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमी का सर्कल है। मिसाल के तौर पर कोई बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया तैयार होता है तो उसमें सैकड़ों दुकानें निकलती हैं, पार्किंग निकलती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिटी और उसका पूरा महकमा इन्वॉल्व होता है, तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, रोजगार के नए मौके पैदा होते हैं।
तो मुझसे आपने जैसे जवाब इरशाद फरमाया, काफी तफसील से ब्रीफ इरशाद फरमाया, अगर इसे समराइज करें हम, यूं हुआ कि इस्लाम ने आजादी दी हुई है कि अगर आप चाहें तो ह्यूज लेवल पे खोलें, बड़े लेवल पर खोलें, और चाहें तो छोटे लेवल पे खोलें। तो
बाजू का ट्रेंड्स बदल रहे होते हैं ना। मदीना मुनव्वरा में मेरा 2 साल पहले जाना हुआ, हर मार्केट टूट रही है जनाब, हर मार्केट टूट रही है। क्यों टूट रही है भाई? वहां की बल्दिया ने कहा है कि लुक वाइज है ना, तब्दील करो अपने आप को। अब गए तो जनाब अंदाजे चेंज है, लुक वाइज बिल्कुल उन्होंने एक जरा जदीद अंदाज के बोर्ड, उनको पूरा एक फॉर्मेट दिया गया, इस अंदाज की दुकान होनी चाहिए, इस अंदाज के बोर्ड होने चाहिए, थोड़ा सा जदीद लगे। जद्दा के अंदर मार्केट थी, बाब मक्का पे पूरी मार्केट डिमोलिश हो गई, नए अंदाज की चीजें बनी हैं। तो यूं बाज औकात जो करवटें हैं ना डिफरेंट वजूहत की वजह से ली जाती हैं, कारोबार भी करवट लेता है। जो आदमी एक ही डगर पर चल रहा होता है उसका कारोबार बैठ जाता है। मार्केट्स के ट्रेंड्स बदलते हैं, फैशन बदलते हैं, तौर तरीके बदलते हैं, नई नई प्रोडक्ट्स। अगर हम 5 साल में गौर करें तो कितनी ऐसी चीज़ें होंगी कि जो हमने कभी इस्तेमाल नहीं की होगी, अब वो हमारी लाजमी जज बन चुकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
जी। मुझसे वैसे ही
जैसे हमारे यहाँ नाश्ता एक मिसाल है, कोई पराठा से करता है तो कोई पापे बिस्कुट से करता है, तो कोई नाश्ते के और बहुत सारे तरीके हैं। अब कोई ट्रेंड चल पड़े जनाब, तरीका ही बदल जाए, तो यूँ ट्रेंड्स बदलते रहते हैं चीज़ों के। तो ताजिर को जो है ना वो खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी
शहजाद भाई।
अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि जो पेट्रोल पंप्स कंपनीज होती हैं ये कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं ताकि कस्टमर डिफॉल्ट ना करे, कंपनी डिफॉल्ट ना करे, और दूसरा ये होता है कि वो जो अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर कुछ चार्जेस बिल की मद में ले रहे होते हैं। तो अब ये है कि जिस जिस तरह से वो हमारी चीज़ों को ले रहे होते हैं और मंथ एंड पे जब बिल आता है तो उसके अंदर एक तो ये कि सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना ताकि पार्टी डिफॉल्ट ना करे, कस्टमर डिफॉल्ट ना करे, और दूसरा जो चार्जेस की मद में बिलिंग में ऐड करते हैं, तो क्या ये जायज़ है या नहीं, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें।
देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट तो इस मौके पर ली जा सकती है, देने मऊद जो है ना पूरा एक असलाह है, उसकी गुंजाइश तो मौजूद है। लेकिन जो चार्जेस की आप बात कर रहे हैं, तो क्या चीज महंगी बेचते हैं या चार्जेस अलग से होते हैं किसी चीज के?
चीज तो सेम रेट पे होती है लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें, यानी कि बिल्स हमें दे रहे होते हैं, इसके अलावा जो हमारी जो पूरी कंपनीज होती हैं उसका पूरा एक इनके पास हिसाब किताब होता है।
मिसाल के तौर पर एक शख्स ने पूरे महीने में 30 लीटर पेट्रोल भरवाया,
ठीक है,
अब वो कितना चार्ज करेंगे इस पर अलग से?
चार्ज तो 30 ही करेंगे, लेकिन
जो सर्विस चार्ज जो भी चार्ज है कितना
1% 2% टोटल बिलिंग के अमाउंट पे वो चार्ज करते हैं। लेट सपोज अगर 3,000 रुपए का बिल है उस कस्टमर का या उस कंपनी के एम्प्लॉय का, तो वो क्या करते हैं कि उस 3,000 के अमाउंट के ऊपर सर्टेन अमाउंट 1% या 2% के हिसाब से कैलकुलेट करके ऐड कर दें एज अ सर्विस चार्जेस। तो क्या ये सर्विस चार्जेस ऐड करना ये इनके लिए जायज होगा?
अगर तो सूरत ये है कि जनाब हम उधार में माल बेच रहे हैं आपको, तो हम जो है 2% महंगा बेचेंगे,
ठीक,
एक तो ये सूरत है, यानी नतीजा और जो माल है और जो खुलासा है वो ये निकल रहा है, बजारते से निकल रहा है। भाई आप देखें, हम एक साबुन लेते हैं तो लिखा होता है जनाब ये इतने की, टैक्स इतना, फला चीज़ इतने, कुल कीमत इतनी। तो कीमत के अज्जा करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बताया जाता है हमें, तो नतीजा तो यहाँ यही निकल रहा है। कि जनाब चूंकि हम उधार बेच रहे हैं तो हम ये चीज़ महंगी बेचेंगे,
ठीक है, फाइनल प्राइस तो वो तय हो गए,
फाइनल प्राइस एक तरह से तय हो गया अगर वो फीसद तय है तो, कि जी उधार में इतने फीसद हम महंगा बेचेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सिंपल मसला है, अगर कोई और पहलू है फिर एक जुदा गाना बात है।
जी अदनान फरमाए।
अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे आपने भी फरमाया कि ट्रेंड चेंज होते हैं, तो अभी जो कोविड टाइम्स गुजरा है पिछले 3 सालों में, उसके बाद कंपनीज में क्या ट्रेंड हुआ है? वर्क फ्रॉम होम, रिलैक्स टाइम्स, रिलैक्स आवर्स, ये कंपनीज ने पॉलिसीज ऑफर की है अपने एम्प्लॉयज को, तो क्या इस तरह की पॉलिसीज जो है उस पर काम करने में क्या शरीय हुक्म है? वैसे एक जमनी सवाल और भी है, से कि कंपनी ने जो है वो रिलैक्स टाइम आपको दिया है कि आप घर पे काम करें, और उस वक्त पे जो है वो एम्प्लॉय घर पे काम नहीं कर रहा, ये घर को देख नहीं रहा उसको, तो उस सूरत में फिर क्या हुक्म होगा? एक तो पॉलिसी, देन अगर उस पॉलिसी का जो टाइम आपको घर पे काम करने का दिया गया है वर्क फ्रॉम होम, उसको अगर आपने जो है वो आपका पर अवेल नहीं किया।
देखिए बहुत सारे नए तजुर्बा सीखे इंसान ने, ठीक है, कोविड के बाद तो दुनिया ही चेंज हुई है, चेंज होने से मुराद ये कि नज़रियात, अफकार और बहुत सारी चीज़ों को दूसरे जाविये से देखना। बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, पहले बड़ा मुश्किल लगता था कैसे होगा। मैं देखता हूँ कि बाद सेक्टर्स के अंदर हफ्ते की भी छुट्टी होती है, हफ्ते की भी छुट्टी है, इतवार की भी छुट्टी है, लेकिन वो जो सेक्टर्स हैं वो आम जो डेज होते हैं उसमें 1 घंटा बढ़ा देते हैं, कि भाई जो 6 दिन आ रहे हैं हफ्ते में वो मिसाल के तौर पर 8 घंटे आते हैं, और जो 5 दिन आ रहे हैं वो 8 के बजाय 9 घंटे ड्यूटी देते हैं। तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आजिर और मुस्ताजिर की, कि कंपनी की और एम्प्लॉय की इसके अंदर तो गुंजाइश मौजूद है। वर्क फ्रॉम होम की जहाँ तक बात है, अगर तो उन्होंने काम दे दिया कि भाई ये मिसाल के तौर पर कोई आईटी कंपनी है, उसने अपने डेवलपर को प्रोजेक्ट दे दिया है, ये प्रोजेक्ट आपने करना है, और भले आप घर बैठ के करो या यहाँ बैठ के करो, तो वो तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वक्त का पाबंद नहीं है, अगर प्रोजेक्ट वाइज बात है उनकी। अगर घंटे वाइज बात है कि भाई आपको इतने घंटे देने हैं और आप आज़ाद हैं, रात में दें, दिन में दें, और वो उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। मेरी एक मतलब बात हुई थी एक आईटी वाले से, कहने के वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इतने घंटे का ये काम इतना होना चाहिए, उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, हम माउंट नहीं करते कि आप दिन में करो या रात में करो, सोने जागने के मामलात। अब जो घर रहता है वो सोचता है कि भाई मैं बच्चों को वैन पे क्यों भेजूँ, खुद मैं लेकर आऊँ, खुद छोड़ कर आऊँ, एक तो सेफ भी है, माहौल भी अच्छा है, बच्चा थकेगा भी नहीं, पैसे को भी बचत हो जाएगी। तो इन तमाम तनाजों के अंदर अगर तो टाइम फिक्स हो गया कि नहीं जनाब आपने घर पे भी 9 to 5 बैठना है, ताकि जब आप रजू किया जाए, जब आपको कॉल पे लिया जाए आप दस्तयाब हो, तो उसको वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा है कि नहीं वक्त की पाबंदी ज़रूरी नहीं है, घंटे इतने देने या फिर प्रोजेक्ट वाइज काम है, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है।
हमारे प्रोग्राम को भी मुफ्ती साहब और हमारे शुरका का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। सवालात यकीनन हमारे शुरका के जहन में भी बाकी होंगे, और स्क्रीन के उस तरफ यानी आप अफराद जो मदनी चैनल के व्यूवर्स हैं आपके भी सवालात होंगे, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीक हाजिर होंगे, लाइव सिलसिला भी होगा, मुफ्ती साहब भी होंगे, आपकी कॉल होंगी, सवालात होंगे, जवाबात का सिलसिला होगा। देखते रहिए मदनी चैनल, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि।
सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना, सच्चा अमानतदार ताज मुझे को तू या रब बना, तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।